તારીખ 29/8/1998 શ્રી સમયસર કલષ્ટિકા શ્લોક નંબર 4 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 107 મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે.
ચોથો કળશ છે
શ્રી સમયસર કલષ્ટિકા ચોથો કળશ છે. સમ્યક દર્શન કોણ પામે છે? કળશનો વિષય એવો છે કે ભગવાનની વાણીમાં બે નહીંથી કથન આવેલું છે, નિશ્ચયની અને વ્યવહારની. બંનેનો વિષય વિરોધ છે, આશય અવિરોધ છે. વિષય વિરોધ હોવા છતાં આશય અવિરોધ છે. નિશ્ચયનો વિષય ત્રિકાળી ધ્રુવ છે, વ્યવહારનો વિષય અનિત્ય પર્યાય છે. બંનેના વિરુદ્ધ ધર્મો હોવા છતાં બંનેના પરિણમન કાળે જેને એ બંનેનું કોઓર્ડિનેશન કરતા આવડે છે એ વિરોધનો નાશ કરે છે અને પોતાના આત્માને હિતની પ્રાપ્તિ કરે છે, સમ્યક દર્શન આદિને પામે છે. કળશનો વિષય એવા પ્રકારે છે. એ ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ ફલિત થાય છે કે અનેક પ્રકારના વિરોધાભાસી વિરોધનો આભાસ થાય એવા, વિરોધ નથી ખરેખર પણ વિરોધનો આભાસ થાય એવી વાતો, એવા કથનો આવે તો પણ એનું કોઓર્ડિનેશન કરતા આવડવું જોઈએ. જો એ જીવ ન કરી શકે તો એને વિરોધ ભાષ્યા વગર રહે નહીં. વિરોધ ભાષે તો એને શાસ્ત્રના વચન ઉપર, જ્ઞાનીના વચન ઉપર વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા આવે નહીં અને કોઈ રીતે આત્મકલ્યાણ થાય નહીં. બહુ સાદો દાખલો લઈએ કે આ જીવ પર્યાય અપેક્ષાથી જોવો તો અનંતકાળથી જન્મ મરણ કરી ગયો છે, અનંતા જન્મ મરણ કરી ચૂક્યો છે. પણ દ્રવ્યની અપેક્ષાથી જુઓ તો આ જીવ જન્મોય નથી અને મર્યોય નથી. એકેય વાર જન્મ નથી અને એકેય વાર મર્યો નથી. એનો એ જ રહ્યો છે, ઉત્પન્ન થયો નથી, નાશે થવાનો નથી. તો સા વિરોધાભાસી કથન થયું કે ન થયું? એમ ન કહી શકાય કે કોઈ વાત ખોટી છે બેમાંથી. છતાં પણ એ બંનેનો મેળ કરતા જેને આવડે અને એમાંથી આત્મકલ્યાણ કેવી રીતે સાધવું, કેવી રીતે સાધી શકાય એ પ્રકારથી મેળ કરતા આવડે, એ દ્રષ્ટિકોણથી મેળ કરતા આવડે ત્યારે ખરેખર જીન વચનમાં રમે છે. જો કે અહીંયા કહેશે કે જીન વચનનો મુખ્ય વિષય શું છે, વિસ્તાર ઘણો છે જીન વચનનો, જેને જેના વિસ્તાર પાસે, જે દિવ્ય ધનીના વિસ્તાર પાસે અંગ પૂર્વનો અબજો શ્લોકોનો વિસ્તાર અનંતમાં ભાગે છે. 12 અંગનો વિસ્તાર દિવ્ય ધની પાસે અનંતમાં ભાગે છે. એવા વિસ્તારવાળા જીવ જીન વચનનો સંક્ષેપ એ છે કે તું એક શુદ્ધ આત્મા છો, અને એમાં તું રમણતા કર, તારા સ્વરૂપમાં રમણતા કર, તો તું જીન વચનમાં રમણતા કરે છે. અહીંયા શબ્દ એવો વાપર્યો છે, જીન વચસી રમંતે, જે જીન વચનમાં રમણતા કરે છે. કેવી રીતે? મોહનું વમન કરીને, મોહને મૂકી દઈને, એવો આ શ્લોકનો વિષય છે. કેટલીક વિશેષ વાતો પણ એમણે રાજમલજીએ આ વિષય ઉપરાંત થોડીક વિશેષ વાતો કરી છે અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિએ, એ પણ એનો આસ્વાદન કરવા યોગ્ય છે. સ્વાધ્યાયથી ઉભય નય વિરોધ ધ્વંસીની સ્યાદ પદાંકે જીનવચસી રમંતે યે સ્વયં વાંત મોહાઃ સપદિ સમય સારમ તે પરમ જ્યોતિ ઉચ્ચૈઃ અનવમનય પક્ષાક્ષુણમ ઇક્ષંત એવ. ખંડાન્વય સહિત અર્થ, તે સમય સારમ ઇક્ષંતે એવ. તે એટલે આસન ભવ્ય જીવો, અહીંયા કોની વાત લેવી છે? જેનો સંસારના પરિભ્રમણનો અંત આવવો સમીપ છે. આસન એટલે નજીક, આસન એટલે નજીક, નજીક આવ્યો છે. શેની નજીક આવ્યો છે? ભવ્યતાની નજીક આવ્યો છે. ભવ્યતાનો પરિપાક થવાનો જેને સમીપ છે, મોક્ષ માર્ગ પામવા જેને પામવો જેને સમીપ છે, એવો જીવ કોઓર્ડિનેશન કરે છે એમ કે છે. બીજાને વિરોધ ભાસે છે. જ્યારે જેનો આસન ભવ્યપણું થયું છે એ મેલ કરવા માંડશે. કેમ કે એક વાત લક્ષ્યમાંથી છોડવા યોગ્ય નથી કે જે કાંઈ ભગવાન કહે છે એ તો આત્માના હિત માટે જ કહે છે ને. કોઈ પણ કથનનો ઉદ્દેશ કે તાત્પર્ય આત્માનું કલ્યાણ કરાવવાનો છે કે બીજો કાંઈ છે? તો એ એક દ્રષ્ટિકોણ હોય અને એનું લક્ષ્ય હોય તો એ પ્રમાણે જીવ સુમેળ કરે, કોઓર્ડિનેશન કરે, એટલે સુમેળ કરે. તો કોણ કરે છે સુમેળ? કે આસન ભવ્ય જીવો સુમેળ કરે છે. કોણ સુમેળ નથી કરતો? નાસ્તિ એમાંથી નીકળે છે કે જે આસન ભવ્ય નથી એ મેળ કરતા નથી. આ વખતે આગ્રાની શિબિરમાં એના ઉપર બધા વિશેષ ચાલ્યું હતું, કોઓર્ડિનેશન ઉપર. કેમ કે ગુરુદેવના પ્રવચનો છે એ દ્રષ્ટિ પ્રધાનતાથી છે. મુમુક્ષુને હજી દ્રષ્ટિ પ્રગટ થઈ નથી. કોઈ વાત સમજાય, કોઈ વાત ન સમજાય, અથવા કોઈ ઓઘે ઓઘે પકડી લે. શુદ્ધાત્મામાં રમણતા કરવા યોગ્ય છે એમાં બે મત નથી. અને એ રમણતા કરવા માટે શુદ્ધાત્માની મુખ્યતા હોવી જોઈએ કે થવી જોઈએ એમાં પણ બે મત નથી. પરંતુ એમ થવા અર્થે શું કરવું જોઈએ એ વિષય ઉપર ઉપેક્ષા સેવવામાં આવે અને એ વિષયને મૂકી દઈને શુદ્ધાત્માને મુખ્ય કરે તો એ વિધિને છોડીને કંઈ કામ કરવા માગે છે એ ખરેખર કામ કરવા માગતા નથી. આસન ભવ્ય જીવો શુદ્ધ જીવને, સમયસાર એટલે શુદ્ધ જીવ, સમય નામ પદાર્થ, એમાં સારભૂત જીવ દ્રવ્ય શુદ્ધ જીવને પ્રત્યક્ષપણે પામે છે. જે આસન ભવ્ય જીવો છે એ તો પોતાના શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપને પ્રત્યક્ષપણે પામે છે એટલે અનુભવે છે, સપદી એટલે થોડા જ કાળમાં, અલ્પકાળમાં, શીઘ્રપણે, બહુ અલ્પકાળમાં. આસનભવ્ય જીવ છે છતાં એને બહુ વાર લાગે છે એમ અહીંયા નથી કહેતા. આસનભવ્ય જીવ છે થોડા જ કાળમાં પોતાના સ્વરૂપનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી લે છે. આસન એટલે નજીક આવેલો, ભવ્ય એટલે ભવ્યતાની નજીક આવેલો. પછી જેના સંસાર સાગરનો કિનારો નજીક આવી ગયો છે એને પણ આસન ભવ્ય કહેવામાં આવે છે. જે મોક્ષ માર્ગની સમીપ આવવાની તૈયારીમાં છે એને પણ આસન ભવ્ય કહેવામાં આવે છે. એ બધું સવળું લે છે. હિન્દી મેં લેના પડેગા, મેં ભૂલ જાતા હું, આપ થોડા જિકર કર દેના. ક્યા કહા કે જો આસન ભવ્ય જીવ હોતે હૈ વો અપને શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ કો બહુત અલ્પકાલ મેં અનુભવ કર લેતે હૈ, ઉસકો જ્યાદા દેરી નહીં લગતી. ક્યો કે જીવ મેં શક્તિ તો બહુત હૈ, તાકત તો બહુત હૈ, ઓર વર્તમાન પરિસ્થિતિ મેં સંગની પંચેન્દ્રિય કો તો અનુભવ કરને કી પૂરી પૂરી શક્તિ હૈ, પ્રગટ શક્તિ, પર્યાય મેં પ્રગટ શક્તિ હૈ. લેકિન વો ઉસકા સદુપયોગ નહીં કરકે દુરુપયોગ કર રહા હૈ, ઇસલિયે ઉસકો અનુભવ નહીં હો રહા હૈ. દૂસરા દૂસરા અનુભવ કરતા હૈ, જિસકા અનુભવ નહીં કર સકતા હૈ ઉસકા અનુભવ તો કરતા હૈ. જૈસે સ્વાદ કા અનુભવ કરતા હૈ, ઠંડી ગરમી કા અનુભવ કરતા હૈ, વો કર નહીં સકતા ફિર ભી કરતા હૈ, યાને કરતા હું એસા માનતા હૈ, એસા આભાસ ઉનકો હોતા હૈ. તો ફિર જ્ઞાન ખુદ હી અનુભૂતિ સ્વરૂપ હૈ, સ્વયં અનુભૂતિ સ્વરૂપ હૈ, ઉસકા અનુભવ કરને મેં કોઈ આપત્તિ તો નહીં હૈ. ખુદ હી ટેડા ચલતા હૈ, અસરલ હોતા હોતા હૈ તો નહીં હોતા હૈ, સરળ હોતા હૈ તો હોઈ જાતા હૈ, તો અલ્પકાલ મેં હોતા હૈ એસા કહેતા હૈ. આચાર્ય મહારાજ કી નજર મેં આસન્ન ભવ્ય એસા દેખા ગયા હૈ કે જો અલ્પકાલ મેં હી પ્રત્યક્ષ રૂપ સે અપના શુદ્ધ સ્વરૂપ કા અનુભવ કરતા હૈ. જિસકા અનુભવ હોતા હૈ એસા જો શુદ્ધ જીવ, શુદ્ધ આત્મા, વો કૈસા હૈ કે અનાદિ સિદ્ધ હૈ. અનાદિ સિદ્ધ મેને કભી ઉત્પન્ન નહીં હુઆ હૈ, અનાદિ સે હૈ હૈ ઓર હૈ. સિદ્ધ હોના મેને પ્રાપ્ત હોના, લેકિન કોઈ નઈ પ્રાપ્તિ નહીં હૈ, ઇસલિયે વો અનાદિ સે હૈ હી. ઓર કૈસા હૈ કે અનય પક્ષાક્ષુણમ, અનય પક્ષ અક્ષુણમ. અનય પક્ષ એટલે મિથ્યા અવાદ, અક્ષુણમ અખંડિત હૈ, મિથ્યાવાદ છે અખંડિત હૈ. યાને કોઈ જીવ કા સ્વરૂપ ભ્રાંતિ છે, જૂઠા પ્રકાર સે બતાતે હૈ, કુછ ભી કહેતે હૈ, ઇસસે કોઈ સ્વરૂપ કો હાનિ નહીં હોતી, સ્વરૂપ વૈસા કે વૈસા હી રહેતા હૈ,
उसका कोई बिगड़ता नहीं। मिथ्यावाद से वो खंडित नहीं होता, अखंडित है मतलब खंडित नहीं होता। भावार्थ ऐसा है, इस बात का भावार्थ ऐसा है, जहां जहां शब्दार्थ को खोलने की जरूरत लगती है राजमिर जी उसका भावार्थ करके इस बात को खोल देते हैं। मिथ्यावाद से अखंडित है इसका मतलब क्या है कि मिथ्यावादी बौद्ध आदि मैंने जगत के अन्य मत जो अस्तित्व दर्शन है आत्मा को स्वीकार करते हैं, बौद्ध में सब आ गया, बौद्ध वेदांत सब आ गया, झूठी कल्पना अनेक प्रकार से करते हैं आत्मा के विषय में, अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं, तो भी वे झूठे ही है, क्या झूठे हैं मैंने झूठे ही है, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई हीरा को कांच माने, हीरा को हीरा नहीं माने, और पत्थर माने, वैसे तो पत्थर है ही लेकिन मामूली पत्थर माने और फेंक दे, उसमें कुछ नहीं है, तो क्या हीरा पत्थर हो जाता है, क्या कंकर हो जाता है, क्या नुकसान किसको गया, जिसने नहीं पहचाना उसको गया। तो भी वे झूठे ही हैं, आत्म तत्व जैसा है वैसा ही है, ये राजमुल जी की पद्धति है, कोई एक विशेषण से नहीं कहेंगे। अध्यात्म में
अभेद की प्रधानता है और आगम में भेद की प्रधानता है। आगम और अध्यात्म दो शैली है, शास्त्रों में दो शैली चली है, एक आगम पद्धति से बात चली है, एक अध्यात्म शैली से बात चली है। तो अध्यात्म में अभेद की प्रधानता है और आगम में भेद की प्रधानता है, और जो आसन भव्य होते हैं वो दोनों का सुमेल करते हैं। क्या करते हैं? सुमेल करते हैं। क्यों? भले ही भेद और अभेद प्रतिपक्ष में है, भेद और अभेद प्रतिपक्ष में है, और बहुत सूक्ष्म बात है एक, कि जब स्वानुभूति होती है, स्वानुभव होता है, तो स्वरूप का अभेद अनुभव होता है। क्या होता है? अध्यात्म है ना, वो अध्यात्म पर्याय है, तो स्वरूप का अभेद अनुभव होता है, और जब स्वरूप का अभेद अनुभव होता है तब ही भेद का यथार्थ ज्ञान होता है। इसके पहले भेद के ज्ञान में कुछ कल्पना का मिलावट हो जाता है, सही ज्ञान नहीं होता। तो जो भेद का विषय है वो आगम का है और अभेद का विषय वो अध्यात्म का है, और स्वानुभूति के काल में दोनों का मेल ऐसा हो गया कि एक साथ दोनों ज्ञान में आ जाता है, फिर भी लक्ष्य भेद पर नहीं रहता, लक्ष्य अभेद पर रहता है, ऐसा बनता है। तो राजमल जी यहाँ अध्यात्म शैली से टीका कर रहे हैं तो कहते हैं कि आत्म तत्व जैसा है वैसा ही है, आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, आत्मा अखंड है, पूर्ण है, वो नहीं कह करके जैसा है वैसा बोल दिया। क्योंकि किसी एक विशेषण से कहने पर उतना भेद हो जाता है, वो भेद भेद से बताना नहीं चाहते, अभेद से बताना चाहते। फिर भी कहेंगे कि अज्ञानी को भेद से कहे बिना अभेद का ज्ञान होता नहीं। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, चतुर हो, साधिक हो, ऐसा लिखा है तो पांचवा कलश माचा चौथे लिटी त्रीजी लिटी चलियो ने तेज जीव वस्तु ने कहवा मागे त्यारे एमज कहवामा आवे के जेना गुण दर्शन ज्ञान चारित्र ते जीव। जो कोई बहु साधिक इतले अधिक बुद्धिमान, बहुज बुद्धिशाली होय, घणो बुद्धिशाली होय, तो पण समझावा माटे एने एमज कहेवू पड़े, भेद थी ज कहेवू पड़े। अने एम भेद थी कहेवू एनु नाम व्यवहार, एनु नाम व्यवहार। एम करीने एमणे ए विषय ऊपर चर्चा करी छे, ये पर्टिक्युलर पॉइंट ऊपर आ कलश में चर्चा करी छे। शुं कहे छे के आत्म तत्व तो जैसा है वैसा है। अब वे भव्य जीव क्या करने से शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होते हैं, वही कहते हैं। वो भव्य जीव है, वो क्या करता है तो अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। ऐसा क्या करता है कि जिससे वो अपना स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, ऐसा प्रश्न उठा करके उसके उत्तर में श्लोक के शब्द को लेते हैं कि ये जीन वचसी रमन्ते, वे आसन भव्य जीव जिन वचन मैंने दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपाधि रूप जीव वस्तु, उसमें सावधानपने से, रुचि से, श्रद्धा से प्रतीति करते हैं। क्या कह कहा कि वे आसन भव्य जीव जिन वचन में रमणता करते हैं, मैंने सावधान हो जाते हैं, उसमें रुचि करते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि बहुत रुचती है, उनकी श्रद्धा करते हैं, उनकी प्रतीति करते हैं। और उस जिन वचन का विषय क्या है कि ये जीव शुद्ध जीव स्वरूप है, वही उपादेय है। समग्र जिनवाणी, समस्त दिव्य ध्वनि, उसका टोटल एक जगह लगा दिया। कहाँ लगाया? सभी का तात्पर्य कि एक शुद्धात्म स्वरूप उपादेय है। सारे जिन वचन का यही सार है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 12 अंक का भी वो सार है। उसमें वो सावधान होते हैं कि शुद्धात्म स्वरूप उपादेय है, वही उसमें वो सावधान होते हैं, उसमें वो विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, प्रतीत करते हैं। उसका विवरण जीन वचसी रमनते, इसका विस्तार अब करते हैं। कि शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं भावार्थ, भावार्थ शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, इसका नाम रुचि, उसका नाम श्रद्धा, उसका नाम प्रतीति है। यहाँ दूसरी बात नहीं लिया, स्वानुभव की बात लिया, क्योंकि जीन वचन का केंद्र स्थान क्या है कि शुद्ध जीव वस्तु। तो शुद्ध जीव वस्तु का अनुभव करता है, उसकी श्रद्धा प्रीति रुचि करता है, अनुभव करता है, वही जीन वचन में रमणता करते हैं। जो जीन वचन को तो बहुत पढ़ते हैं परंतु शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करते हैं तो जीन वचन में रमणता नहीं करते हैं, ऐसा लेना है। जीन वचन में रमते हैं इसका मतलब हो कि जीन वचन का विषय है उसमें रमते हैं, वाचक में रमते नहीं है। कहने में ऐसा आता कि वाचक में रमते हैं, वास्तव में वाच्य में रमते हैं, उसका वाच्य तो शुद्धात्मा है। क्यों? भावार्थ ऐसा है कि वचन तो पुद्गल है, वचन तो पुद्गल है, उसकी रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। वचन की रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए शब्द का राग नहीं करना, वचन का राग नहीं करना। वचन द्वारा जो वाच्यभूत वस्तु है वहां तक जाना। वचन तो साधक है और अर्थ साध्य है। वचन द्वारा क्या समझ में आता है, इसका अर्थ समझ में आता है, और अर्थ को यथार्थ रूप में कौन समझता है कि अर्थ साधक है और ज्ञान रस साध्य है। तो ज्ञान रस कब आएगा कि ज्ञान स्वभावी वस्तु है, वहां तक ज्ञान पहुंचेगा तब। प्रैक्टिकली उल्टा में कैसा होता है कि कोई चीज में रस कैसे आता है कि कोई बात सामने आती है, इस पर से इसके विषय तक ज्ञान पहुंच जाता है तब रस आता है। जैसे किसी को कोई मिठाई की आइटम भाती है, बात उसकी निकली, तो उसको रस कब आएगा कि बात का जो विषय मिठाई है वहां तक उसका ज्ञान गया तब। वो बात लिया है दीपचंद जी ने अनुभव प्रकाश में कि शब्द साधक है और अर्थ साध्य है, फिर अर्थ साधक है और ज्ञान रस साध्य है, तो वहां तक जाना चाहिए। वचन का राग नहीं करना है, ये तो पुद्गल है, पुद्गल का राग नहीं करने का है, इसका जो विषय है आत्मा वहां तक हमारा ज्ञान जाना चाहिए। ज्ञान रस साध्य है, ऐसा ज्ञान में जो ज्ञान रस है उसका ही आस्वादन होता है, वास्तव में तो रस का ही आस्वादन होता है। सभी भावों में आस्वादन किसका होता है, रस का ही होता है। जीव रसास्वाद किसका लेता है, इसके विषय का लेता है। वचन पुद्गल है, उसकी रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। अतः वचन द्वारा कहने में आती है ऐसी जो कोई उपादेय वस्तु, उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति है। वचन द्वारा कही हुई उपादेय रूप वस्तु शुद्ध आत्मा, उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति है, और अनुभव किया वही उपादेयता हुई। स्वानुभव माने क्या? हे उपादेय की दृष्टि से देखा जाए तो स्वानुभव माने क्या के शुद्ध स्वरूप की परम उत्कृष्ट उपादेयता, उसी का नाम स्वानुभव। जिसने शुद्धात्म स्वरूप को समझा और उसी दृष्टिकोण से समझा कि वो उपादेय है और सब हे ही है, एक शुद्धात्मा उपादेय है और सब हे ही है, वहां तक तो विकल्प है, वहां तक तो विकल्प है। जब उसका निर्विकल्प अनुभव होता है तब ये उपादेयता सार्थक हुई। विकल्प में
तो स्वानुभव को हे उपादेय का दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वानुभव और कुछ नहीं है, एक अपने स्वरूप की परम उपादेयता को ही स्वानुभव कहने में आता है, दूसरा और कुछ नहीं है। अरे स्वरूप नो उत्कृष्ट महिमा ये अनुभव छे। स्वरूप विकल्पात्मक महिमा वहां तो यथार्थ महिमा नहीं है, पर्याप्त महिमा नहीं है, वो अपर्याप्त है। क्यों ऐसा? क्यों कोई ऐसा कहेंगे कि हमारे तो भाव तो है, विकल्प वाले भी हमारे भाव है, पर हमारे भाव में महिमा होती है तो उसमें क्या अनुचित है? हम विकल्प से, विकल्प वाले भाव से महिमा करते हैं, इसमें क्या आपत्ति है? भाव तो हमारे हैं ही, और वो भी स्वरूप के महिमा के हैं, दूसरे तो नहीं है, तो उसमें अनुचित क्या बात है? ऐसा कोई तर्क कर सकते हैं? तो कहते हैं कि तुम जिसकी महिमा करते हो वो तो स्वरूप से ही निर्विकल्प है। क्या? तुम जिसकी महिमा करते हो स्वरूप तो निर्विकल्प है, तो निर्विकल्प स्वरूप में निर्विकल्प हो जाओ तब तो महिमा बराबर है, बराबर महिमा हुई। निर्विकल्प स्वरूप के विकल्प से महिमा करने से क्या फायदा? ये तो विरुद्ध जाति के भाव है। जो दुश्मन है वो कहां तक प्रशंसा करेगा? विकल्प तो दुश्मन है, अरी है, उसको तो मार डाला भगवान ने, विकल्प को मारा है। दूसरा कि जो निर्विकल्प स्वभाव है ये तो विकल्प का क्षयकरणशील है, वो कहेंगे यहां राजमल जी ऐसा कहेंगे, विकल्प का क्षयकरणशील, विकल्प का घात करना, नाश करना, क्षय कर डालना, वो उसका तो स्वभाव है। अब तो ऐसा स्वभाव को भाव में लेता है तो वो तो उसका घात करने वाला है, और तुम्हारा विकल्प तो जिंदा रहा, मरा ही नहीं। इसका मतलब कि स्वभाव का आविर्भाव हुआ नहीं, स्वभाव का आविर्भाव नहीं हुआ।
तो
स्वभाव के साथ एकत्व नहीं होता है, विकल्प का दीवार बीच में खड़ी होती है, तां तक महिमा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। स्वभाव के भाव भाषण होने से स्वभाव जितना सामर्थ्यवंत है, सामर्थ्य के कारण से जितना महिमावंत है, वो दिख जाता है, भाव भाषण में आ जाता है और महिमा उमड़ पड़ती है, जोर से महिमा आने लगती है। फिर भी जब तक विकल्प है वहां तक वो महिमा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। निर्विकल्प स्वरूप में निर्विकल्प हो जाओ। दूसरी बात क्यों, जब स्वरूप निर्विकल्प है तो निर्विकल्प स्वरूप में निर्विकल्प हो जाओ। दूसरी बात क्यों, विकल्प वाली बात क्यों कि नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात है। तो क्या कहा, इसलिए वचन द्वारा कहने में आती है जो कोई उपाधेय वस्तु उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति है, उसका अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात हम नहीं समझते, अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वहां तक हम विकल्प वाली बात की मुख्यता नहीं करेंगे। कैसा है जीन वचन, अब कहते हैं तो जीन वचन कैसे हैं कि उभय में विरोध ध्वंसिनी, उभय मैंने दो, नहीं मैंने पक्षपात, दो प्रकार के पक्षपात है। एक पड़खे को कहते हैं, दूसरा दूसरे पड़खे को, अपने अपने पड़खे की बात करता है। उसमें विरोध मैंने परस्पर वैर भाव, क्या है परस्पर विरोध है, मेल नहीं खाता है, इसका विवरण कि एक नए सत्व को, सत्व मैंने अस्तित्व को धारण की हुई वस्तु, उसको सत्व कहते हैं, सत्ता को धारण करने वाली मौजूद होने वाली जीव वस्तु, एक नए सत्व को द्रव्यार्थिक नए द्रव्य रूप, सत्व को द्रव्यार्थिक नए से द्रव्य रूप कहता है। वही सत्व को, उसी सत्व को, उसे हियाती वाले पदार्थ को पर्यायार्थिक नहीं पर्याय वाला पर्याय रूप कहता है। चीज दो नहीं है, एक कहता है कि द्रव्य रूप है, एक कहता है कि पर्याय रूप है, एक कहता है कि नित्य है, दूसरा कहता है कि अनित्य है। विरोध बात में परस्पर पूरा विरोध है, अतः परस्पर विरोध है। कैसा है जिन वचन के उसका मेटनशील है, ध्वंसिनी, ध्वंस करना मैंने नाश कर डालना, विरोध का नाश करने वाला है। वचन में परस्पर विरोध होने पर भी जिन वचन तो दोनों को सुरस्त का, दोनों में जो विरोध है उसका नाश करने वाला है, विरोध रखने वाला नहीं है। अब जिसको विरोध खड़ा रहता है वहां वाद विवाद होता है, वहां झगड़ा होता है, वहां गड़बड़ होती है। विरोध का नाश करने वाला जीन वचन है, परस्पर विरोध है फिर भी इसका स्वभाव ही जीन वचन का ऐसा है। शील मैंने स्वभाव, मेटनशील मिटा देने वाला है,
भावार्थ ऐसा है, इस विषय का भावार्थ ऐसा है कि दोनों में विकल्प है, दोनों नहीं है वो भी विकल्प है, वस्तु द्रव्य रूप है वो भी विकल्प हुआ, वस्तु पर्याय रूप है वो भी विकल्प हुआ, दोनों विकल्प रूप है। जबकि शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव निर्विकल्प है, वस्तु तो निर्विकल्प है और उसका अनुभव भी निर्विकल्प है। तुम भेद से क्यों ऐसा लेते हो, भेद को छोड़ दो। जब कोई अन्य पदार्थ में भी गाढ़पनत्व होता है तो उसका विकल्प उठाना नहीं पड़ता। जैसे शरीर है, शरीर में प्रगाढ़ एकत्व चल रहा है, फांस तनक की मन में साले, एक फांस वागे तो काम करता करता कोई लाकड़ा ने फांस आत्मा बागी की कितनी से वाव, जितनी बारीक होए फांस के भी होए बाल जितने भी साले से है। क्यों? फॉरेन एलिमेंट है, पोसाता नहीं। तो फिर निर्विकल स्वरूप में सूक्ष्म विकल्प तुमको कैसे पोसाता है, ये बात हुई। तो थोड़ा भी नहीं चले, तो देहात दृष्टांत तो वो लेने का था कि देह में आत्मबुद्धि है तो ये मेरा है मेरा है मेरा है ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता। और एक फांस भी आती है तो बर्दाश्त नहीं होता, पता है बर्दाश्त। तो इसमें क्या हो गया, इतना बड़ा शरीर है इसमें एक बाल जितने फांस है तो क्या हो गया इसमें, ऐसा नहीं चलाते कोई, चलाते क्या। आंख में कण भी नहीं चलता, एक कण भी आंख में नहीं चलता। तो फिर निर्विकल्प स्वरूप में विकल्प क्यों चलता है तुम्हारा, पर तुम्हारा स्वरूप है, खुद का स्वरूप है तो ये मेरा स्वरूप है ये मेरा स्वरूप है ये मेरा स्वरूप है, मैं नायक हूं मैं नायक हूं मैं नायक हूं, ये बात क्यों, ऐसा क्यों, तुम होशो हो, तुमको विकल्प क्यों उठाना पड़ता है, हैं? खिलाने में मेहमान को आग्रह करना पड़ता है, हैं? अपने वाले को करना पड़ता है, रख दिया खा लेंगे आराम से, फिर भी दूरी होती है तो करना पड़ता है, देखो आप आग्रह नहीं किया तो हम नहीं खाएंगे, या उनको भी लगता है कि वो आग्रह नहीं करेंगे तो नहीं उसको बुरा लग जाएगा, तो इतनी दूरी होगी, उतना पर्दा हो गया बीच में, अंतर हो गया। जो अपने होते हैं उसको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसे स्वरूप में स्वरूप का विकल्प नहीं, स्वरूप में स्वरूप का विकल्प भी नहीं चले, उतना भी नहीं चले, निर्विकल्प अभेद अनुभव में रहे, पूरी जीन वचन में रमते हैं, उसमें द्रव्य ऐसा है न पर्याय ऐसी है न, वो बात उसमें नहीं है। ये सब जानने के लिए है, क्या है, द्रव्य गुण पर्याय आदि भेद सब जानने के लिए है, वेद उपाधि करने के लिए नहीं है। उपादेयता में तो भेद का मेटनशील है, उपादेयता तो वो तो मिटा देती है भेद को, ऐसी बात है। भावार्थ ऐसा है कि दोनों नए विकल्प है और शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव निर्विकल्प है, अतः शुद्ध जीव वस्तु का अनुभव होने पर दोनों नए विकल्प झूठा है। ये बात थोड़ी मार्मिक करती है। क्या होता है, मुमुक्षु की भूमिका में दोनों नैसे वस्तु को समझने में आता है कि द्रव्यात्मक नैसे आत्मा का स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वरूप, पर्यायार्थिक नैसे मेरा स्वरूप ऐसा है। जब ऐसा विकल्पात्मक भूमिका में मुमुक्षु समझता है तब वो समझ को अनुभव की दृष्टि से देखा जाए तो वो विकल्प है, वैसा मैं हूं ऐसा अनुभव वहां हो रहा है। क्या वस्तु जो निर्विकल्प है वो ज्ञान में नहीं आई, द्रव्यार्थिक नहीं से ध्रुव वस्तु विकल्पात्मक ज्ञान में आई, पर्यायार्थिक नहीं से पर्याय का भेद वाली वस्तु ज्ञान में आई, दोनों में भेद वाली वस्तु ज्ञान में आई, उस वक्त विकल्प हुआ। और सम्यक दर्शन के पहले जो विकल्प हुआ, ऐसा मैं हूं ऐसा अनुभव रहता है और वस्तु का सम्यक दर्शन के काल में निर्विकल्प अनुभव होता है, तब मालूम पड़ता है कि जो मुझे आगे अनुभव विकल्प वाला होता था वो झूठा है, ऐसा वस्तु ऐसी नहीं है। फिर से और स्पष्ट करें कि मुमुक्षु की भूमिका में स्वविकल्प अवस्था में जो विचार ज्ञान चलता है उसमें वस्तु का भेद से ज्ञान करते वक्त कुछ कल्पना हो जाती है, पर उस कल्पना का स्वयं के रूप में अनुभव करता है जी, वो झूठ का अनुभव ऐसा कहते हैं। और वो झूठ का अनुभव कब मालूम पड़ता है कि सत्य का अनुभव होता है तब, ऐसा कहते हैं। राजमल जी ने अनुभव पद्धति से ये बात लिया कि दोनों नए विकल्प झूठे हैं। क्यों? कि अनुभव होने पर ऐसा मालूम पड़ता है, इसलिए अनुभव के पहले जो नए विकल्प चलते थे वो अनुभव होने पर मालूम पड़ गया कि ये तो झूठे विकल्प थे, वस्तु वैसी थी नहीं। पहले मेरी कल्पना में जैसी वस्तु आती थी वैसी वस्तु थी नहीं, वो निर्विकल्प अनुभव से मालूम पड़ता है, ऐसा कहते हैं। ये पद्धति राजमल जी के सिवा और कहीं जगह नहीं देखी। ये बात आगे भी बहुत बार आएगी, अनेक जगह जगह पे आएगी। इसलिए कोई विकल्प में चढ़ जाता है कि मैं ध्रुव हूं, मैं नायक हूं, मैं अपरिणामी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पूर्ण हूं, कहते देखो ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं कि ये झूठ का अनुभव है, क्या लगता है तुमको? पहले समझ लो तुम कि ये जो तुम्हारा विकल्प चलता है सम्यक दर्शन निर्विकल्प अनुभव के पहले कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, ये झूठ का अनुभव बोला
क्या? तुमको ये झूठ का अनुभव लगता है तब तो तुम्हारा विकल्प पर से वजन उठ जाएगा, वरना तुम्हारा विकल्प पर उतना वजन रहेगा कि तुम विकल्प करते ही रहोगे। ये बात हो जाएगी और निर्विकल्प होने का अवसर नहीं आएगा। भावार्थ ऐसा है कि दोनों नए विकल्प हैं। शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव तो निर्विकल्प है, अतः शुद्ध जीव वस्तु का अनुभव होते दोनों नए विकल्प जुटे हैं ऐसा अनुभव में आता है, ऐसा विकल्प भी करना नहीं पड़ता है कि ये झूठा है। वो भी निर्विकल्प, स्वानुभव भी निर्विकल्प और अगला अनुभव झूठा है वो भी निर्विकल्प, ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता, ऐसा ज्ञान हो जाता है, ऐसा अनुभव ज्ञान रह जाता है। और कैसा है जिन वचन कि स्याद पदांके स्यादवाद, स्याद पद माने स्यादवाद अर्थात अनेकांत, जिसका स्वरूप पीछे कहा है, पीछे मैंने इस ग्रंथ में एक स्यादवाद अधिकार लिखा है परिशिष्ट में, टीकाकार आचार्य श्री ने टीका पूरी करने के बाद एक दो अधिकार लिखे हैं, उसमें एक स्यादवाद अधिकार लिखा है और 14 कलश लिखा है इसके पर, कितने 14 कलश लिखे हैं। तो कहते कि स्यादवाद अर्थात अनेकांत, जिसका स्वरूप पीछे कहा है वही है चिन्ह, जिसका वही इसका स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है स्यादवाद का, स्वरूप पीछे कहा ऐसा है, ऐसा है। भावार्थ ऐसा है कि जो कोई वस्तु मात्र है ये तो निर्भेद है, जो आत्मा वस्तु है वो तो निर्भेद है, एक अखंड वस्तु है, वह वस्तु मात्र वचन द्वारा कहने पर जो कुछ वचन बोलने में आता है वही पक्ष रूप है, वही पक्ष रूप है। तो वचन द्वारा तो किसी एक पहलू उसको बताया जाएगा, फिर दूसरे वचन से दूसरे को, तीसरे वचन के तीसरे को, ऐसा बताया जाएगा। वस्तु में पूरी वस्तु एक है, जैसे एक हीरे में अनेक पहलू है कि नहीं? हाँ, एक पहलू वो हीरा नहीं है, हीरा मैंने सभी पहलू एक साथ जिसमें है ऐसा है, कोई एक पहल हीरा नहीं है, फिर भी कोई एक एक गुण से एक विशिष्टता से बात करते हैं तो पूरा हीरा को बताने के लिए करते हैं, वो तो एक माध्यम है कि एक पहलू से बात करना पड़ता है। तो कहते हैं कि जो वस्तु है वो तो निर्भेद है, उसको वचन द्वारा कहने पर जो कुछ बोलने में आता है कोई एक पक्ष को वहां रुजुआत होती है, फिर कैसा है असंभव्य जीव? देखो अभी मुद्दे की बात क्या कि स्वयं वांत मोहाहा, सहज रूप से वमन किया है मिथ्यात्व यानी विपरीत पना, ऐसा है। मोह से विपरीत पना है, और जिसने मोह का वमन कर दिया ऐसे आसन्न भव्य जीव होता है। वो विपरीतता को छोड़ करके स्वरूप का जैसा अनुभव है, जैसी वस्तु है वैसा अनुभव करता है, निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प अनुभव करता है, तो मिथ्यात्व और विपरीतपना को छोड़ देता है। इतनी बात पर भावार्थ बहुत बढ़िया लिखा है। क्यों कि एक एक पक्ष से बात जिन वचन में आती है तो भी उसका सुमेल करने वाला कौन होता है? जिसको विपरीतपना नहीं है वो। विपरीतपना किसको होता है? मिथ्यात्व को होता है। सम्यक में विपरीतपना नहीं है, तो जिसने वो विपरीतपना को छोड़ दिया है, वमन कर दिया है, ऐसे जीव को सुमेल होता है। उस विषय को एक अलग दृष्टिकोण से यहाँ राजमल जी ने इस बात को पेश किया है, बहुत अलग दृष्टिकोण से ये बात किया है। भावार्थ ऐसा है, भावार्थ करके वो बात लिया है, भावार्थ ऐसा है कि अनंत संसार जीव को भमते भमते अनंत काल होता है। संसार में जीव को परिभ्रमण करते कितना काल हुआ? सबको अनंत काल हुआ है। अनंत काल पहले कोई सिद्धालय में गए उसको भी अनंत काल परिभ्रमण होने के बाद हुआ है। सबों का परिभ्रमण का काल कितना है? अनंत है। वह संसारी जीव, ऐसे संसारी जीव है, उसमें एक भव्य राशि है, एक अभव्य राशि है। अनंत काल से संसार में जीव परिभ्रमण करता है, उसमें बहुत बड़ी संख्या भव्यों की भी है, बहुत बड़ी संख्या अभव्यों की भी है। दोनों की संख्या में अनंतता है, मैंने किसी का अंत आने वाला है ही नहीं, भव्यों का भी नहीं और अभव्यों का भी नहीं। उसमें अभव्य राशि जीव तीनों काल मोक्ष में जाने के लिए अधिकारी नहीं। तीनों काल में कभी भी अभव्य जीव तो मोक्ष में जाएंगे नहीं, इसकी योग्यता ही ऐसी है। भव्य जीव में भी कितने एक जीव मोक्ष जाने के योग्य है? सभी नहीं। कितने एक जीव मोक्ष जाने के योग्य है? कितने जीव तीनों काल भव्य होने पर भी मोक्ष जाने वाले नहीं है? देखो ये वस्तु स्थिति है, केवल ज्ञान अनुसार जो मोक्ष जाने वाले हैं, कितने जीव मोक्ष के जाने के योग्य है उसके मोक्ष पहुंचने का काल परिमाण है। क्या है? उसके मोक्ष में जाने का काल निश्चित है कि उतने काल में ही मोक्ष में जाएंगे। तो ये बात है, वो मोक्ष को अवलंबन लेने योग्य नहीं है। अवलंबन लेगा तो पुरुषार्थ नहीं उठेगा। तो शास्त्र में तो बात सब पहलू से आएगी, कौन सी बात का अवलंबन लेना चाहिए और कौन सी बात का मात्र जानकारी करके अवलंबन नहीं लेना चाहिए, ये दो विभाग ऐसा मेल भी हमको करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं सुमेल कर सकते हैं तो भी बड़ी आपत्ति हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। वो ख्याल में रखते हुए उसमें वो कहना क्या कहना चाहते हैं थोड़ा देखेंगे। बात तो थोड़ा बहुत है, उसमें कहीं भी बातें लिखी हैं, કલ્પે સ્વાધ્યાય.